सारे चक्र को समझने के लिए आपको दो बेसिक चीजों पर जाना पड़ेगा। समता विलास में एक छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल एंड में जाकर, समवाद विज्ञान, या उसको आप समता विज्ञान भी कह सकते हैं। वहां महाराज जी ने नौवे वचन में लिखा है कर्तापन कारण शरीर और कारण संसार है। मतलब शरीर की उत्पत्ति का कारण, संसार की उत्पत्ति का कारण मेरा कर्तापन है। तो कारण शरीर और कारण संसार है। इसका मतलब जिस संसार को मैं दूसरे का करके देख रहा हूं, वास्तव में वो मेरे मन की उपज है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की स्वप्न की रचना जब होती है, जब नींद से जागता हूं तो मेरे अंदर कोई डाउट नहीं होता। मैं कहता हूं भाई मेरे मन का संकल्प था, वो लोग भी पैदा हो गए, संसार भी पैदा हो गया और मेरी देह भी पैदा हो गई वहां पर, और सारे क्रियाकलाप भी मैंने किए, उसके द्वारा सुख भी भोगे और दुख भी भोगे, बेचैनी भी भोगी, सब कुछ हुआ, और इसको मैं बड़ा ही हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता हूं। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मेरे मन का संकल्प था। अब जागा हूं तो ये असली संसार सामने आ गया, वो नकली संसार गायब हो गया। लेकिन वाणी कोई दूसरी बात कह रही है, ये भी उसी स्रोत से आई है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। वाणी कह रही है कि सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, जिस प्रकार रात्रि का स्वप्न है उसी प्रकार ये संसार का खेल है। यदि कोई दोनों में डिफरेंस है तो टाइम स्केल का अंतर है, वो थोड़ी देर के लिए सत्य है, ये ज्यादा देर के लिए सत्य है। सत्पुरुषों के दृष्टिकोण से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि अंतर है तो प्रैक्टिकल एक ही अंतर है कि स्वप्न पूरी तरह से प्रारब्ध है, उसमें पुरुषार्थ नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इस जागृत संसार में प्रारब्ध तो वैसा ही है, लेकिन साथ में मैं पुरुषार्थ भी कर सकता हूं। यदि पुरुषार्थ में नहीं कर सकता होता तो संसार में गुरु क्यों आता? पशुओं के लिए तो गुरु नहीं है, पक्षियों के लिए तो गुरु नहीं है, नाम को कोई चीज सिखाई जाती है। तो स्वप्न का संसार मेरा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पशु और पक्षी का जीवन है। लेकिन वर्तमान में जो मेरा प्रेजेंट जीवन है संसार में, इसमें मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं। बात वही आती है, क्या पुरुषार्थ कर सकता हूं मैं, क्या पुरुषार्थ कर सकता हूं? देखो, एक तरफ तो सिद्धांत मुझको बांध रहा है कि प्रारब्ध से बंधे हुए हो, जैसा कि प्रश्न कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सत्पुरुष कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करके तुम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हो। तो मन में डाउट खड़ा होना स्वाभाविक है कि जब सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है तो मेरा पुरुषार्थ क्या काम करेगा। तो इसलिए महाराज जी ने जब वो सिद्धांत लिखा संवाद विज्ञान में, तो उन्होंने कहा कि कर्तापन कारण शरीर और कारण संसार है। इसका मतलब जिस दिन भी मेरे अंदर कर्तापन खत्म हो गया, उस दिन ये संसार, ये शरीर भी लोप हो जाएगा, ये सारा जगत ब्रह्म रूप हो जाएगा, इसमें कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा संसार ब्रह्म रूप हो जाएगा। इसीलिए अद्वैत का सिद्धांत सत्य सिद्धांत है, सारा जगत आत्म रूप है, ईश्वर रूप है। महाजी कहते हैं प्रेमी, इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, ये शब्द रूप है, इसको ओम भी कह देते हैं हम लोग। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं वो, और ये जो इस कारण है, कॉज है, ये कॉज का इफेक्ट भी होता है फिर वो, तो उसको कार्य कह देते हैं। तो कारण का जो कार्य है, कॉज का जो इफेक्ट है, वो कहते हैं ये स्थूल संसार और स्थूल देह। कर्तापन का इफेक्ट कहां आ रहा है? इसलिए माई क्या कर रहे हैं, देखो वाणी क्या करिए, कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुखसार। मूल कारण तो कर्तापन है, तो कर्तापन तो कितनी सूक्ष्म चीज है, आज आप विचार करके देख लो। कितनी सूक्ष्म चीज है कर्तापन। तो कह रहे हैं कि ये जो कारण का कार्य है, समझे, जिसको महाराज जी ने वर्ड यूज किया है वहां पर कारज, अशुद्ध फॉर्म है कार्य की। तो कॉज का जो इफेक्ट है, तो कारण का जो कार्य है, समझे, वो है स्थूल देह और स्थूल संसार। तो सारा ब्रह्मांड जो आपके सामने है, ये मेरे कर्तापन के कारण कार्य रूप में उत्पन्न हुआ है, और इसका स्वरूप क्या है, इस कार्य का, इस देह और इस ब्रह्मांड का, या देह और संसार का, इसका स्वरूप क्या है? वो कहते हैं, लिखते हैं वहां पर, यह केवल कर्म फल द्वंद है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो देह और सारा ब्रह्मांड ये कर्म फल द्वंद है। द्वंद क्यों कहते हैं? द्वंद का मतलब होता है युद्ध, क्योंकि दोनों जो हैं एक दूसरे के उत्पादक भी हैं और एक दूसरे को नष्ट करने वाले भी हैं। सुख से दुख पैदा होता है और दुख से सुख पैदा होता है। तो दो दो पोल्स हैं जो एक दूसरे का निर्माण भी करते हैं, एक दूसरे को नष्ट भी करते हैं, इसलिए इसको द्वंद कहा जाता है। तो संसार में आप कोई भी पुरुषार्थ क्यों ना कर लो, आप सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इस सिद्धांत का पता ही नहीं है। जिसकी रचना ही द्वंद रूप है, आप उसमें से एक कैसे छांट सकते हो? क्या यह संभव है? तो इसीलिए जो अध्यात्म विद्या कह रही है कि ये जो जगत में हमको जो फल की प्राप्ति होती है कर्म करके, ये फल द्वंद रूप होता है। तो द्वंद में तो यदि सुख मिल भी गया तो दुख में ऑटोमेटिकली बदल जाएगा वो, और यदि दुख है तो ऑटोमेटिकली भविष्य में वो सुख में बदल जाएगा वो। ये आपस में इंटरचेंज ऑटोमेटिकली होने लगेंगे, आप पुरुषार्थ करो या ना करो, लेकिन उनमें चेंज होना है। तो ये सारा का सारा आपकी देह और आपके आगे जो संसार है, ये कर्म फल द्वंद है। किसका कर्म फल द्वंद है? जिसका कर्तापन है उसी का तो कर्म फल द्वंद है ये। तो अब बताइए, यदि जो व्यक्ति भी अज्ञानी बनकर या संसारी बनकर संसार में सुख प्राप्ति की कोशिश कर रहा है, तो जो वाणी कह रही है, बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो खोई, ये वाणी कितना सत्य बोल रही है, लेकिन हम इसको स्वीकार करेंगे? कभी भी चार हाथ पर का प्राणी जो आईएएस ऑफिसर बन गया हो या बड़ा कोई पद मिल गया हो, तो कभी कहेगा मैं पशु हूं? कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा मैं तो बहुत सफल आदमी हूं, मेरे अंदर बहुत अकल है, समझ नहीं, मैं बहुत लोगों के काम करता हूं, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मैं पशु हूं। लेकिन गुरु के सामने बैठा हो या शास्त्र के आईने में देखे तो वो केवल पशु है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, 1% भी शेष नहीं है उससे। जिसको इस बात का होश ही नहीं है कि इस सारी प्रकृति का सिद्धांत क्या है और ये है क्या, गुरु उसका कोई है ही नहीं, अपना गुरु आप ही बना हुआ है या संसार को गुरु बना रखा है उसने, तो उसको अपने जीवन की ABCD भी नहीं पता, पता ही नहीं है उसको, गहरे अज्ञान में जी रहा है। तो इसलिए सत्पुरुष या कहिए गुरु के सामने जब मैं आता हूं, तब मेरी आंख खुलती है, यदि मैं उसकी बात को सही समझने की कोशिश करूं तो, नहीं तो फिर भी बंद रहती है। जैसे कि आम सत्संगियों की हालत होती है, 20-20 साल सत्संग सुनते रहते हैं,
उनको पता ही कुछ नहीं होता।
सत्संग में आकर ही एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं, ये उनकी गति होती है, ये उनकी समझ होती है। तो ये सिद्धांत कितना गहरा है कि मेरे आगे जो संसार पैदा हुआ है मेरे शरीर के साथ, महाजी कह रहे हैं देह और संसार एक चीज है, ये तो महाजी के वर्ड्स हैं, देह और संसार एक चीज है, देह करके संसार है, देह और संसार में कोई अंतर नहीं है, ये सत्पुरुष की बात है। जिसको इस सृष्टि का अनुभव है, जैसी है वैसा ही अनुभव है, उसका यह निर्णय। तो अब बताइए कि मेरी बुद्धि इस निर्णय पर पहुंची है क्या? मैं कहता हूं मैं सारी बातें समझता हूं, लेकिन इस निर्णय को मैंने कभी समझा, इस रूप में समझा? बात तो यही सत्य है। तो जब ये मेरी देह और संसार कर्मफल द्वंद है, तो फिर ये फल रूप में मिला ना मुझे, फल होता है भोगने के लिए, तो मैं जीवन को भोगूंगा, मैं इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। आपको कहीं लगता है कि मैं दुनिया बदल डालूंगा? आपको संभव लगता है दुनिया बदल डालूंगा? ये तो आपका अपराध है। तो इसीलिए ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए आप कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। ये आपकी बात समझ में आए या नहीं आए, सत्य है ये। इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि जिस कर्म को करने के लिए ये देह पैदा हुई है, वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब महर्षि रमण दो बातें बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं यहां पर, हम यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं सुनने में। वो कह रहे हैं कि देह प्रारब्ध के अधीन है और चाहने वाला मैं हूं, मैं चाहूं या ना चाहूं इससे प्रारब्ध पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं, तब तक तो प्रारब्ध मेरा हो गया, और जिस दिन मैंने देह को अपने से अलग समझना शुरू कर दिया, उस दिन प्रारब्ध देह का हो गया, मेरा उससे कोई संबंध ही नहीं। तो ये संबंध देह के साथ तोड़ने के लिए मनुष्य जन्म है। तो ये क्या हाथ पैर से कर्म करके टूट जाएगा संबंध? तो जुड़ जाएगा, और सेवा करके भी नहीं टूटेगा, सेवा तो हाथ पैर से करोगे ना। यदि आपको ना ये भाव रहा कि मैं देह हूं और सेवा कर रहा हूं, तो ये संबंध कैसे टूटेगा आपका? तो इसलिए शास्त्र निष्काम सेवा की बात करते हैं, इसलिए शास्त्र निष्काम सेवा की बात करते हैं, सेवा की बात नहीं करते, और संसारी सेवा करते हैं, इसलिए सेवा भी उनके लिए बंधन हो जाती है, सेवा का कोई। एक बार मैं देवराजी के पास बैठा था, तो देवराजी कह रहे थे कि सेवा यदि विचार के साथ ना की जाए, अर्थात इस भाव से ना की जाए कि निष्काम सेवा करनी है, ईश्वर भक्ति के लिए करनी है, तो सेवा अहंकार बढ़ाती है, तो सेवा जीव के पतन का कारण बनती है। इसलिए बड़े बड़े सेवादार अहंकारी बन जाते हैं, पतन हो जाता है उनका। तो इसीलिए विज्ञान तो यह है, अब कितना बारीक विज्ञान है, यदि नहीं समझोगे तो अध्यात्म विद्या क्या सीखोगे आप? मंत्र भी जाप कर लोगे, क्या बनेगा आपका बताओ? तो बात यह है कि इस जीव ने इस देह के अहंकार से मुक्त होना, या यूं कहिए इस देह के भ्रम से या इस देह के मोह से, कि मैं देह हूं, यह गहरा मोह जीव के साथ लगा हुआ है। इसलिए सारे सिद्धांत शास्त्रों में क्यों आते हैं, ये कि देह की मृत्यु हो जाती है, जीव बच जाता है, उसके संस्कार उसका कर्मफल सारा मन में जो सुरक्षित रहता है वो भी बच जाता है। तो अगली देह यही मन उसके तैयार करता है, यही संस्कार की अगली देह तैयार करते हैं, उसमें प्रार्थ भोगने को मिलता है, वहां वो मजबूर होता है। तो मैंने सोचना यही है कि मैं जीव हूं जो इस देह की मौत के बाद बच जाता है, तो उन्हें सोचना है कि मैं कौन हूं, फिर इस देह के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूं? कितना लाचार होता हुआ जीव, जब विचार करो, जिस देह को अपना स्वरूप मानकर ये सारी जिंदगी जिया, और जिस देह करके इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, इतने सारे संबंध बनाए, अब उसका वक्त आ रहा है कि सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है, उसकी मौत नहीं हो रही है, ये मौत हो जाते ये कोई क्या करना है, ये फिर जैसे मन चाहे जी लो, सारे पशु जीते ही नहीं जीते, इंसान भी वैसे जी सकता है। लेकिन इंसान से ये कहा था तूने बड़ा होश में जीना है, तो क्या होश है ये? होश यही है कि मैं इस होश में आ जाऊं कि देह से, इस देह के रहते रहते मुक्त हो जाऊं। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम आत्म स्थिति है, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। तो अब बताइए, मैंने जो ईश्वर की पूजा करनी थी वो इस वास्ते करनी थी कि इस देह के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, इस देह के रहते रहते। सत्पुरुषों की ये स्थिति होती है। इसलिए महर्षि रमण से पूछा गया, महर्षि एक तो हमको देह दिखाई पड़ती है, एक ऋषि को भी देह दिखाई पड़ती है, हमारा जो देह के साथ संबंध है और ऋषि का जो देह के साथ संबंध है, उन दोनों में अंतर क्या है? अब देखो महर्षि रमण क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऋषि जा रहा है, उसके कंधे पे तौलिया पड़ी हुई है, कहीं रास्ते में गिर गए उसको पता ही नहीं कहां गिर गए। अब महर्षि रमण ये देह के साथ संबंध बता रहे हैं जीव का, कितनी अलग है वो। अब महाराज जी का स्टेटमेंट देखिए, वो जंगल से वापस लौट रहे हैं, भगत जी साथ हैं, तो भगत जी से कहते हैं बनारसी इस समय देह ऐसे लग रही है जैसे कोई छाया संग चल रही हो। अब दोनों के स्टेटमेंट में कोई अंतर है? दोनों के स्टेटमेंट में कोई अंतर है कि देह अलग हो गई नहीं हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई छाया संग चल रही हो, मोह भंग हो गया, ये आत्मस्थिति है। तो सत्पुरुष अपने शिष्य को इसी स्थिति में ले जाना चाहता है, इसीलिए उसने समता विलास लिखी है। इसलिए समता विलास के अंत में यह सबसे सूक्ष्म सिद्धांत है जो लिखा हुआ है संवाद विज्ञान के अंदर, कि कर्तापन कारण संसार और कारण शरीर है, और इसका कार्य स्थूल देह और स्थूल ब्रह्मांड है, और ये स्थूल देह और स्थूल ब्रह्मांड क्या है? ये कर्मफल द्वंद्व है, ये कर्मफल द्वंद्व है। अब बता तू इस संसार में, इस शरीर में कर्मफल द्वंद्व की कमाई कर रहा है, तू कर क्या रहा है? तू मूर्ख नहीं है? फिर तू केवल मूर्ख और कुछ भी नहीं है। तू तेरे 100% अच्छे से अच्छे कार्य जो सामाजिक दृष्टि में अच्छे होंगे वो भी मूर्खता के कार्य गुरु की निगाह में। तो इसीलिए अब गीता का प्रारंभ कहां से हो रहा है? देखो यहां होकर पता लगता है शास्त्र एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं आदमी को। गीता का दूसरा अध्याय से ही ज्ञान शुरू होता है, पहले अध्याय में तो ज्ञान कोई है ही नहीं। तो दूसरे अध्याय में ही कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। क्योंकि कृष्ण जानते हैं फल में तो द्वंद्व होता है, सुख होता है, दुख होता है, और ये दो अपोजिट पोल्स हैं, ये निरंतर बदलते रहते हैं, तो जीव को चैन कैसे हो सकता है? दुनिया का कोई भी कर्म कर लो, कैसा भी कर्म क्यों ना कर लो, आपके मन की बेचैनी खत्म नहीं हो सकती। ना आज तक जितने भी इंसान धरती पर आए कोई चैन लेकर यहां से गया सिवाय सत्पुरुषों के, क्योंकि सृष्टि का सिद्धांत ही यही है कि ये सारी सृष्टि कर्म फल द्वंद्व रूप है, ना ये सुख रूप है ना ये दुख रूप है, क्योंकि द्वंद्व रूप है। द्वंद्व का मतलब है युद्ध, संघर्ष आपस में। तो रणभूमि में किसी को मानसिक चैन मिल सकता है क्या? जरा विचार करके देखो, महाभारत की लड़ाई हो रही हो, कोई कहे मैं चैन से बैठे हुआ हूं यहां पर, हो सकता है? संभव है कभी? इसीलिए मनुष्य ने बेचैनी लेकर जीना है और बेचैनी लेकर संसार से विदा हो जाना है। ये मेरे बारे में फाइनल ट्रुथ है, इसमें लेश मात्र भी आगे पीछे नहीं। तो हम लोगों के एसेट्स देख के भ्रम में पड़ जाते हैं, लोगों के कपड़े देख के भ्रम में पड़ जाते हैं, बाहर का जीवन देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन मन की हालत देखोगे तो ऋषि एक ही बात कह रहा है कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। उपनिषद भी कह रहा है दुखम सर्वम अनुस्मृत काम भोगान निवर्तयेत, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। इसलिए जीने का रास्ता क्या है, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो, ये जीने का रास्ता है, ये उपनिषद का मार्ग है, वेद का मार्ग है। और महाराज जी भी यही कह रहे, गुरु नानक भी यही कह रहे, सहजोबाई भी यही कह रही है। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सवन को सुखी संत का दास। इनको कहां भ्रम है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, इनको तो भ्रम नहीं। जो ईश्वर के मार्ग पर चला था, भ्रम तो खत्म हो गया और निर्णय दे दिया उसने। हम भोगी विलासी लोग, गृहस्थी लोग फंसे रहते हैं इसके अंदर, इन भोगों के चक्कर में इतनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं वो हमारा कर्तव्य है गृहस्थ का पालन, उस कर्तव्य के आगे जो ईश्वर का कर्तव्य है या गुरु ने जो कर्तव्य बताया है उसकी तो कीमत ही कोई नहीं हमारी निगाह में। सब कुछ उसी की कीमत है जो बीबी कह रही है, बच्चे कह रहे हैं, जो गुरु कह रहा है उसकी कोई कीमत ही नहीं हमारे लिए। तो यहां आके पता लगता है कि ईश्वर की मेरे जीवन में कोई कीमत नहीं है। इसलिए मैं माथा टेकू रहता हूं, सत्संग सुनने वाला रहता हूं, हर जगह जाके मनोरंजन करता हूं, हर जगह जाके अपनी वासना पूरी करता हूं। ना मेरा कोई धर्म है, ना मेरा कोई ईश्वर है, सत्य ये है मेरे बारे में। क्योंकि जब मेरी चाल ही नहीं बदली, सत्संग में आके भी, संगत में आके भी मैं ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े करता हूं संग नहीं, तो कहां समझा मैंने ईश्वर को, कहां समझा गुरु ज्ञान को। तो आदमी इस दुर्दशा के साथ, इस गहरी अज्ञानता को लेकर ये कहता है मैं धर्म का पालन करता हूं, तो ऐसा आदमी कहां पहुंचेगा, विचार करके देखो। तो गीता इसीलिए कह रही है कि कर्मण्ये वात करस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। कर्म में अधिकार क्यों करें, क्योंकि देह प्रारब्ध के अधीन है, वो अधिकार है तेरा, तू चाहेगा रोक ले तब भी नहीं रोक सकता। अर्जुन तो कह रहा है कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं संन्यास ले लूंगा, ईश्वर की भक्ति करूंगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं ये तो तेरे हाथ में नहीं है, ये तो देह युद्ध करने के लिए पैदा हुई है, इसका प्रारब्ध है, इसको युद्ध करना ही पड़ेगा। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है, तो सारा ज्ञान समझाना पड़ा तब उसकी समझ में आया। तब कहता है अब जो कहोगे वो करूंगा, मेरी इच्छा खत्म हो गई, मेरी बुद्धि का जो भ्रम था वो खत्म हो गया, अब जो आपकी होगी, आपकी आज्ञा होगी वो मैं करूंगा। तो अब बताइए, गीता में कर्म की बात मनाही तो नहीं, वो तो कर्म की परमिशन दे रही। लोग कहते हैं यही कर्मयोग है, कर्म कर जाओ यही कर्मयोग है, वर्क इज वर्शिप है। वो सामाजिक लोग ऐसी बातें करते हैं, गीता का भी मिसयूज करते हैं वो। तो वहां तो आधी बात नहीं कह रहे हैं, पूरी बात कर रहे हैं। मां फलेषु कदाचन, फल में कदापि नहीं, फल में तेरा अधिकार दिया ही नहीं है। क्यों ना, क्योंकि फल से तूने मुक्त होना है। फल किस रूप में होता है, सुख रूप में होता है, दुख रूप में होता है। दुख मिल गया तो भगाना चाहता है, सुख मिल गया तो पकड़ना चाहता है, कहता है ये बना रहा। तो तुझे पता नहीं है सुख दुख ही तो तेरे लिए बंधन है। जब ऑटोमेटिकली सुख दुख में बदलेगा और ऑटोमेटिकली दुख सुख में बदलेगा तो तेरे हाथ में क्या है। इसलिए सुख और दुख को भी तूने प्रारब्ध के अधीन ही देखना है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सारे प्राणी अपने कर्मों का फल ही सुख रूप में दुख रूप में भोग रहे हैं, और ये सुख दुख द्वंद्व रूप है, अर्थात ये परिवर्तनशील है, ये स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए आज यदि सुखी है तो इस भ्रम में मत रहे कि मेरा सुखी जीवन रहेगा, ऐसी मूर्खता मत कर, ऐसी गलती क्यों करता है। दुखी जीव को तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है संसार दुख रूप है। अमीर आदमी और सुखी आदमी सफल आदमी है ना, वो बहुत बड़ा पापी है। पापी इस रूप में है कि उसने पापी करना है फिर। जिस इंसान ने ईश्वर की तरफ नहीं चलना उसका तो जिंदगी पाप रूप है, उसने पापी करना है क्या करना। जब पांच विकार युक्त हमारा जीवन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, भाई नेचुरल आदमी जो है, संसारी आदमी जो है, वो तो पांच विकार के अंतर्गत जीवन है उसका, उसकी इसका अगर जानता ही नहीं। पांच विकार से ऊपर तो ईश्वर भक्ति का मार्ग है। संसारी मार्ग में तो पांच विकार हैं, किसी के अंदर कम है किसी के अंदर ज्यादा। और महाजी कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर एक विकार प्रबल होता है, पांच में से एक सबके अंदर। किसी के अंदर क्रोध प्रबल होगा, किसी में काम प्रबल होगा, किसी में लोभ प्रबल होगा, तो पैसे के पीछे भागता रहेगा सारी जिंदगी। वो होता है हर व्यक्ति के अंदर होता है, उसको पता लगे या ना लगे। तो जो प्राकृतिक प्राणी है या कोई ये सांसारिक मनुष्य है, उसके अंदर जीवन तो पांच विकार से युक्त है। और पांच डिजीज लेकर जो संसारी जीवन व्यतीत कर रहा हो, उसका मन चैन में कैसे रह सकता है बताओ? विचार करके देखो कैसे रह सकता है। तो इसीलिए हम संसारियों की नकल ना करें कि ये सफल है ये असफल है, उसमें से एक छांट लेते हैं, मैं ये सफल आदमी है मैं ऐसा जीवन व्यतीत करूंगा, इस गलत फहमी में ना रहे। गुरु की तरफ देखें, गुरु क्या कह रहा है। गुरु ज्ञान को अपनी मानसिक खुराक बनाए, उसने जो विज्ञान लिखा है उस साइंस को पढ़े, उस साइंस को सीखे, तो आपको पता लगेगा कि ईश्वर भक्ति के मार्ग पर नहीं चला तो मैं एक जगह तो यह भी लिखवा है पशु से भी नीच जीवन है। तो मेरा जीवन पशु से भी नीचे है, मैं पशु के बराबर भी नहीं हूं, क्योंकि पशु पाप नहीं करता, पशु केवल प्रारब्ध भोगता है, मनुष्य पाप करता है। प्रारब्ध तो भोगता ही है, साथ में इसके अंदर कर्तापन है ना, मैं कर रहा हूं, इसलिए सारा कर्म इसका पाप रूप हो जाता है। तो अब बताइए मेरे लिए, मनुष्य के लिए वाणी क्या कह रही है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, ये पशु से भी नीच जीवन है, क्योंकि ये पाप करता है। संसार का अन्य कोई जगत में जो प्राणी है वो पाप नहीं करते। तो मैं पशुओं से निकृष्ट हुआ या पशुओं से श्रेष्ठ हुआ, ज्ञान की दृष्टि से देखो, तब इंसान को शर्म आएगी यदि उस लाइट में देखेगा अपने आप को कि मैं तो बड़ा पापी हूं, कैसा मनुष्य हूं मैं, कोई होश ही नहीं मुझे जिंदगी का, केवल नकल करके चल रहा हूं। एक स्टूडेंट सारी जिंदगी नकल करके पास हुआ हो तो क्या वो स्टूडेंट कहलाने योग्य है? वो क्या सीखा होगा उसने? तो मैं भी नकलची रहा सारी जिंदगी, दूसरों को देख देख के लक्ष्य बनाता रहा, नहीं पढ़ाई करता रहा और जो पैसा कमाता रहा, अपनी जिंदगी का पता ही नहीं, एबीसीडी नहीं पता मुझे अपनी जिंदगी, अपनी बुद्धि का इतना अहंकार, पैसे का, शरीर का, सुंदरता का इतना अहंकार। तो इसीलिए महाजी ने लिखा ये ब्रह्मांड यानी ये सारा संसार और ये देह ये केवल कर्म फल द्वंद है, और द्वंद का फिर असली मीनिंग याद कर लें, द्वंद का मतलब होता है युद्ध, सुख और दुख में निरंतर युद्ध करता है। जैसे हम यदि ये सोचने लगे दिन और रात में युद्ध चलता है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, जैसे दिन होते ही सूर्योदय होते ही रात भाग जाती है तो द्वंद है नहीं। तो ये प्रकृति में क्या है, ये साइकिल ऑटोमेटिक चल रही है, कोई किसी को रोकता नहीं है, दिन रात को नहीं रोक रहा है, रात दिन को नहीं रोक रहा है, ये स्मूथ साइकिल चल रही है। लेकिन मेरे जीवन में असली संघर्ष चल रहा है, मैं सुख को रोकना चाहता हूं, दुख को भगाना चाहता हूं, मित्र को पास बुलाना चाहता हूं, दुश्मन को दूर भगाना चाहता हूं, हर मामले में मेरी चॉइस है, हर मामले में। तो कितने द्वंद पाल रखे मैंने, हर मामले में मेरी चॉइस है, जाओ तो कितने द्वंद पाल रखे मैंने। तो इसीलिए आपकी पूरी जिंदगी मानसिक क्लेश में बीतनी है, इसलिए इस वहम में मत रहना कि मेरी कमाई अच्छी है मेरा तो सफल जीवन है, इस वहम में मत जीना। अपने मन की हालत देखना कि बचपन से लेकर आज तक कैसी बीती है तेरी, और आगे भी ऐसी ही बीतेगी। दिल पे हाथ रखे कोई कह तो दे इंसान कि मेरा एक साल जो है ईयर सो एंड सो पूरे चैन से बीता है, मेरे मन में कोई क्लेश नहीं था, एक साल नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी में आपको, तो कैसी जिंदगी व्यतीत करिए आप। तो इसलिए गुरु कह रहा है कि मन के अंदर तेरी वासना है, इच्छाएं उठती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तू शरीर का इस्तेमाल करता है, संसार का इस्तेमाल करता है, और उन भोगों का अनुभव इंद्रियों के द्वारा करता है और मन की वासना पूरी करता है। तेरी इच्छा पूरी होती है तो ये सुख की अनुभूति होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो ये दुख की अनुभूति होती है। तो सुख दुख के लहरों में तू गोते खाता रहता है, पूरी जिंदगी तेरी इसी प्रोसेस में निकल जाती है। आइटम बदलते रहते हैं, दृश्य बदलते रहते हैं, तू समझ रहा है कि बस उन्नति हो रही है, तू जहां का था वहीं है या तेरा पतन हो चुका है। तो इसीलिए मैंने अपने आप को जीव समझना है, जीव समझना है। ये देह मुझे कुछ दिन के लिए मिली है धर्मशाला की तरह ठहरने के लिए। आदमी यात्रा करता है तो धर्मशाला में ठहरता नहीं, ठहरता है लेकिन होश रहता है कि धर्मशाला में दो दिन के लिए, चार दिन के लिए, हफ्ते के लिए ठहरा हूं मैं, फिर अपनी मंजिल को निकल जाऊंगा। और मनुष्य देह में मैं इसको घर समझ लेता हूं, अपना घर क्या समझता हूं, अपने को देह ही समझ लेता हूं। तो इसीलिए नहीं, मैंने वाणी को, सत्पुरुष के विचारों को जिस गहराई का वो बयान कर रहे हैं, समझ, उस गहराई से विचार करना चाहिए, ऊपर के सरफेस पे लेवल पे देखते हुए नहीं। अब देखो ना, महा जी की वाणी सादी सी वाणी है, वैराग्य वाणी में, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, औध जात है बीत। ये वाणी कितना स्पष्ट कर रही है, मैंने देखा नहीं कोई इस पर विचार करता हो, मैंने एक भी अभी एक बार भी नहीं सुना किसी का विचार, मैंने इस बात पे कभी नहीं सुना कि ये वाणी कह क्या रही है। ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, जीव नित्य का मुसाफिर है, नहीं, अर्थात ये परमानेंट मुसाफिर है। और संसार केवल सराय की तरह से है, संसार में देह तो आ गई है, देह संसार एक ही चीज, तो मैं मुसाफिर हूं। वो कह रहे हैं मंगत खोज सत शांति, औध जात है बीत। ये शरीर तो अवधि लेके आया ना, आयु लेके आया है, आयु बीत रही तेरी और तूने सत शांति की तलाश करनी है, इसलिए मानव देह तुझको दी गई थी। तू सत शांति की तलाश तो कर नहीं रहा, सुख की तलाश कर रहा है तू, जो द्वंद रूप है। तो अब बताओ मुझे, ये एक ही दोहा आपकी मंजिल के बारे में भी बता रहा है, आपके रास्ते के बारे में बता रहा है, आपकी गलती के बारे में भी बता रहा है, लेकिन मैं इस पर मनन करता हूं क्या? तो सत्पुरुषों की बात आप पूरे पूरे ग्रंथ पढ़ जाओ, क्या होगा? मनन करने के लिए एक दोहा भी पकड़ लो तो आंखें खुल जाएंगी आपकी। तो जो सराय है मैं उसको घर समझ रहा हूं, अपना होम समझ रहा हूं उसको। तो भैया सराय में आदमी निरंतर होश में रहता है कि मैं सराय में ठहरा हुआ, मैंने मंजिल की तरफ जाना है बस। तो इस सराय का तो यूज कर, किस पर्पज के लिए? मंगत खोज सत शांति, सत शांति खोजनी है। सत उसे कहते हैं जो परमानेंट है, जो शांति दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती, मौत भी मुझसे उस शांति को नहीं छीन सकती, उस शांति की तलाश करनी है। और वो शांति सातवें आसमान पे नहीं है, वो इस देह के अंदर ही मौजूद है। तू भी इस देह के अंदर है, तेरी शांति भी इस देह के अंदर है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, महाजी कहते हैं, जिसको जीवन शक्ति कहते हैं, जीवन सत्ता कहते हैं। क्योंकि तेरे अंदर कॉन्शियसनेस है और उस जीवन सत्ता के अंदर कॉन्शियसनेस है, तेरे अंदर चेतना है, उस जीवन सत्ता के अंदर चेतना है, बाकी सारा जगत अचेतन है, ये डेड मैटर है, कुछ भी नहीं है। गति बहुत है इसके अंदर लेकिन है डेड मैटर। एक एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, गति तो वहां पर भी है, बड़ी एग्जैक्ट गति है, लेकिन है डेड मैटर, वो डेड पार्टिकल है, जीवन तो नहीं है, चेतना तो नहीं है उसके अंदर। मैं जानता हूं और ईश्वर जानता है। तो इसीलिए तूने जानने वाली सत्ता से संबंध बनाना है, इस डेड मैटर से क्या संबंध बनाया बैठा हुआ, इस मृत देह को तू अपना स्वरूप समझ रहा है। फिर कहता है मैं बुद्धिमान भी हूं, कहां का बुद्धिमान है? तो इसीलिए इस देह के अंदर वो जीवन सत्ता जो है वो प्रारब्ध के अनुसार इस देह को चला रही है। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को मैं उनके प्रारब्ध के अनुसार संसार में भरमाता हूं। तो मैं क्यों इस पीछे पड़ा हुआ? तेरा कर्म ये नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, तेरा असली कर्म ये है कि मैंने प्रभु की याद करनी है, जैसा गुरु ने मार्गदर्शन किया है उसके अनुसार याद करनी है, और जैसा जीवन जीने की उन्होंने डायरेक्शन दी है उस तरह उस डायरेक्शन में जीवन व्यतीत करने की मैंने सोच ली। अब एक कोई कहे साहब मेरे अपराध में 10 घंटे सोना लिखा हुआ, मैं 10 घंटे सोता हूं, आप क्या कहोगे उसको? गुरु ने कहा तुझसे ऐसा क्या? गुरु तो कह रहा है तू चाहे तो 6 घंटे भी सो सकता है, चाहे तो 8 घंटे भी सो सकता है। तो आंख खोल के यदि सिमरन करने लग जाए तो कोई रोकेगा? तो तुझे कोई रोकेगा? विचार करके देखो, आंख खोल के आप सिमरन करने लग जाओ, कोई रोक सकता है आपको? तो सिमरन करना ये प्रारब्ध है क्या? ऐसा भी लोग कहते हैं भगवान कराना चाहेगा सिमरन करा लेगा, ऐसे भी लोग मिलते हैं हमको, यहां भी आते हैं तपोभूमि में। संशय तो बहुत तरह के होते हैं लोगों के में। तो इसीलिए मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा वो बात की बात है, मैंने सोचा तो गुरु के हिसाब से है जैसा गुरु गाइड कर रहा है। अपनी नियत तो साफ करनी है, मैंने मन में ही चालाकियां भरी है मेरी, मन में ही बेमानी भरी हुई है, समझ नहीं, मन में ही बर्बाद मैंने इसको धोखा देना है। ये तरह मन की जो सोच है ये तो ये ईश्वर का सिमरन करने देगी तो कर पाएगा कोई प्रभु की याद? तो ऐसा मन जिसमें खोटी वासनाएं भरी हुई है वो तो ईश्वर की तरफ चल ही नहीं पाएगा। इसलिए मन की शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि की बात सब पुष्ट करते हैं। ये जो ज्ञान है इससे तेरे अंतःकरण की शुद्धि होती है, इस ज्ञान के अनुसार जब सोचता है तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो अब जो आप कहोगे मेरे बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जो पाप कर्म है, मान लिया किसी ने किसी का मर्डर कर दिया सपोज, अब मर्डर तो कर दिया, अब यदि वो अध्यात्म विद्या पढ़ेगा कहेगा ये तो मेरे प्रारब्ध में था, मर्डर कर दिया मैंने, और इसके भाग में था कि बिना भाग के तो मार नहीं सकता मैं इसको, मैं प्रारब्ध तो बदल नहीं सकता किसी का। तो सवाल ये है कि उसके प्रारब्ध में ऐसा है तो उसको इस बात का, यदि उसने विद्या पढ़ी है अध्यात्म विद्या, किसी आवेश में मर्डर कर दिया उसने, या यूं कहिए प्रारब्ध ने मजबूर कर दिया, जैसा अर्जुन को मजबूर किया प्रारब्ध में सबको मारना, उसने मारा नहीं मारा, क्रिया तो वही हो रही है, लेकिन कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसके प्रकाश में जब क्रिया कर रहा है तो उसकी अपनी वासना पीछे से काम नहीं कर रही है, वो ईश्वर का हुक्म काम कर रहा है कि प्रभु तुम्हें जैसा प्रारब्ध दिया है वैसा काम लो इससे, मैं करने वाला हूं, उसके अंदर कर्तापन नहीं है, अंतर ये है तेरे अंदर कर्तापन है। भले ही प्रारब्ध के वशीभूत होकर तू कर्म कर रहा है लेकिन तेरे अंदर कर्तापन है, इसलिए ये जो कर्म कर रहा है इसका फल तू फिर भोगेगा। और तू गुरु आज्ञा मानकर गुरु का ज्ञान के अनुसार चलकर यदि अपने कर्तापन को तो खत्म कर लेता तो कर्म भले ही ये होता लेकिन तू उस कर्म फल से मुक्त रहता। तो इसीलिए दो चीजें हमने संसार में खत्म करनी होती हैं, एक कर्तापन की भावना और दूसरी होती है कर्म फल भोगने की आसक्ति। तो इसीलिए जब भक्ति एडवांस करती है तो आपसे कहा जाता है कि कर्म फल का तू ईश्वर आज्ञा में त्याग कर, कर्म फल को ईश्वर के समर्पण कर। तो कर्म फल समर्पण करने का क्या मतलब हुआ? जीवन में बड़े से बड़ा दुख आए बड़े से बड़ा सुख आए मैं दोनों के लिए जी ही नहीं रहा हूं, मैं उसे उधर देख ही नहीं रहा हूं, मेरा संबंध कर्म करने तक है, कर्म करता हूं नहीं वो भी निष्काम रूप में करने की कोशिश करता हूं और जो कुछ भी नतीजा निकला उससे मेरा संबंध ही कोई नहीं है। लेकिन ये जीव कब कर सकता है? जब उसका मन प्रभु प्रेम में लग गया हो, प्रभु भक्ति में उसका मन लग गया है, उसकी आवश्यकता महसूस करता है, उसी के लिए वो जीता है और जीने का पर्पज ही कोई नहीं उसका, ये काम तो वही कर सकता है। इसलिए ये बात भी उसी के लिए है ये बात भी उसी के लिए है जिसके अंदर ईश्वर भक्ति आ चुकी है। तो कर्म फल, इसलिए महाजन लिखा कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है, ये है असली त्याग। पैसा त्याग कर दिया ये असली त्याग नहीं है, पैसे के प्रति आसक्ति फिर भी है तेरे अंदर, तूने 1 करोड़ भी त्याग कर दिया है तेरे पास तो आसक्ति तो फिर भी है, वो त्याग असली त्याग नहीं है, उससे मन का मैल खत्म नहीं होगा। मन के अंदर जो द्वंद है चल रहा है, द्वंद का जो आसक्ति है सुख और दुख के प्रति, तो वो द्वंद तेरा तब खत्म होगा जब तू कर्म फल द्वंद का ही त्याग करेगा पूरा का पूरा। अर्थात फल में तेरी आसक्ति है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जरा विचार करके देखो, जिसके फल में ही आसक्ति नहीं रही, उसकी कर्म में आसक्ति रहेगी क्या? अरे कर्म तो फल की प्राप्ति के लिए करते ना, तो इसलिए वो कर्म भी ईश्वर हुक्म में ही करेगा कि प्रभु जैसा प्रारब्ध दिया है देह से कर्म ले ले तू। तो इसीलिए महा जी ने कहा एक जगह कि प्रेमी जब तक एक इच्छा भी बाकी है ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और एक बार महा जी ने यह भी कहा कि इनके मन में कोई इच्छा नहीं उठती, और यदि कोई इच्छा उठ जाए तो उसी वक्त पूरी कर देंगे। इसको छिन्नकारी वासना महाराज जी ने कहा है, ये क्षणिक वासना होती है। देखिए है एक इंस्टेंट झलक आई इच्छा की, वो प्रार्थवश आती है, वो आती है उस देह का प्रार्थ बाकी है ना अभी, तो एक मोमेंटरी जो है वो एक संकल्प आएगा और सत्पुरुष उसको पूरा भी कर देगा, लेकिन उसका संबंध कोई नहीं होगा। तो एक प्रेमी ने पूछा महाराज जी दरिया में बाढ़ आई हो, आपको ना संकल्प आया मैंने पार जाना है, क्या करेंगे आप? बोले ये दरिया में पैर डाल देंगे। बोले महा जी वो तो दरिया शरीर बह जाएगा। बोले समझ लेंगे शरीर की मौत आ गई। अब देखिए ये सत्य है बात उनकी, सत्पुरुष ऐसे ही एक्ट करता है, ऐसे ही एक्ट करता है। अब लास्ट महा जी का जब वक्त था 54 का, तो अंत में वो अंबाला गए हुए थे, तो वहां से उन्होंने आगे जाना था। फरवरी में 4 फरवरी को देर उन्होंने छोड़ी दी, तो सारे प्रेमी पीछे बोलते महाराज जी हमारे शहर में चलना, हमारे शहर में चलना, समझ नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि अभी ये कुछ नहीं कह सकते, कल बताएंगे। कल क्या बताएंगे, कोई प्रोग्राम बनाते नहीं थे वो। अगले दिन सुबह हुई तो सारे प्रेमी तो पीछे पड़े थे, है नहीं। तो बनारसी जैसे कहते हैं, बनारसी वहां कौन सी शहर था वो, पंजाब में अमृतसर नहीं था वो, है हाँ अबोहर, वो लाला कुंदन लाल की खिंच मार रही है। तो संकल्प आया, ये एक मोमेंटरी संकल्प है, वो चलो उधर चलते हैं बस। चल पर वहां से अमृतसर गया, अमृतसर श्री छोड़ दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो कैसा सत्पुरुष का जीवन होता है, कहीं से कोई संबंध नहीं, तो आत्मलोक में अपने लीन है। और हम लोग रात दिन देह को सजाते रहते हैं, देह को ही संवारते रहते हैं, इसी की यादें करते रहते हैं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ये मैं वो। तो अध्यात्म मार्ग में हमने कहां पहुंचना है और कहां खड़े हुए हैं, इतने तरह से त्याग के लिए हम रोते रहते बैठे हुए हैं। कहां पूरे के पूरे कर्म फल द्वंद का त्याग करना है आपने, लेकिन ये तब कर पाएगा अंदर कोई बेस तैयार हो जाएगा तेरा, कोई आधार मिल जाएगा तुझको। तो इसीलिए वो आधार मिल जाए इसी के लिए सिमरन है ये। तो सिमरन तुझे गुरु के बताए हुए तरीके से नहीं करेगा, परहेज उस तरीके से नहीं करेगा, तो तुझे आधार कभी नहीं मिलेगा। 20 साल सिमरन करता रहे कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तो पूरा प्रोग्राम एक साथ चलना पड़ता है, और ये कठिन प्रोग्राम नहीं है। माजिन का प्रेमी सबसे पहले तू जानता है जो गलती कर रहा हूं मैं, उस गलती को छोड़। झूठ बोलना गलती है, रिश्वत लेना गलती है, किसी को सता के पैसा कमाना गलती है, पता है ना तुझे। वेजिटेरियन डाइट छोड़ के नॉन वेज डाइट खा रहा है, गलती है ये, पता है तुझे। स्वाद के बस खाता है वो अलग बात है, लेकिन जो गलतियां कर रहा है उसको तो शुद्ध कर ले, पहला काम तो ये कर ले। जब तेरा जीवन शुद्ध हो जाए फिर तू त्याग करना शुरू कर कि 10% दान कर तू, समझ नहीं, 2 घंटा सुबह शाम ईश्वर स्मरण के लिए निकाल तू, कम से कम समय सीमा में कमाई कर, समय सीमा के अंदर तू आध्यात्मिक कार्य कर या सत्कर्म कर। तो सारा प्रोग्राम गुरु दे रहा है, गुरु तूने बनाया है, तो धीरे धीरे उसके हिसाब से अपने लाइफ को टर्न दे। अदरवाइज लापरवाही करता रहा तो कितनी आयु है तेरी भाई, जवानी में आदत नहीं बदली, बुढ़ापे में कहां बदल पाएगा तू, वो तो वैसे ही मजबूर हो जाता। तो इसीलिए पुरुषार्थ जो है वास्तव में मनुष्य का ये आंतरिक पुरुषार्थ है, मानसिक पुरुषार्थ है, जिसके लिए वो स्वतंत्र है। मैं चाहूं तो यहां बैठ के बीवी बच्चों की याद करता रहूं, यहां बैठ के मैं ईश्वर की याद करता रहूं, ये तो मैं जानता हूं अंदर से, ये कोई दूसरा थोड़ा जान सकता है। मैं ये ईश्वर की याद खींच रही है या संसार की याद खींच रही है तो मैं जानता हूं। तो यदि मैंने इस ज्ञान गुरु ज्ञान को बारीकी से नहीं पढ़ा, गहरा मन नहीं किया, तो इस निर्णय पर कहां पहुंचूंगा मैं, ये बातें समझ भी कभी नहीं आएंगी। गीता तो सारी बड़े लोग सुनाए थे, लेकिन पहले शुरू में ही रखा हुआ है कि कर्मण्येव वात्करस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में कदापि नहीं, फल में अधिकारी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि फल में कर्म फल द्वंद होता है, सुख होता है दुख होता है, और तूने सुख दुख से नाता तोड़ना है, इसलिए उधर देख भी मत। तो गीता के प्रारंभ में यह बात, इसका अंदर गीता इसी बात की पूर्ति के लिए लिखी गई है, बाकी ये काम तो कर सके इसलिए गीता गाइड कर रही है। तो कितना गहरा ज्ञान है उसने इसका, और महाजन फिर भी आखिरी में लिखा ये बात, गीता में तो शुरू में लिखा हुआ। तो इसीलिए हम धर्म का वहम ना पालें, बिना गुरु ज्ञान के ये धर्म आपको ना समझ में आएगा ना चल पाओगे। इसे गुरु पर गहरी श्रद्धा रखकर कि बड़ा भाग्य है कि पूर्ण गुरु का ज्ञान मुझे मिला है, एक उस पर आस्था आई है, उसका पता लगाया मुझे, तो अब उस ज्ञान के अमल पर मर मिटे, समझे ना, इसी में हमारे जीवन का कल्याण है। ओम ब्रह्म सत्यम।